नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। चक्रवाती तूफान रेमल भीषण तूफान में बदला। तूफान के असर से आज आधी रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच भूस्खलन होने की संभावना। विशेष जांच दल ने राजकोट अग्निकांड की जांच शुरू की। गुजरात उच्च न्यायालय ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत और कई घायल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज शाम फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता ने अच्छी नीयत और नीतियों के कारण तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। देश समझ गया है कि आईएनडीआई गठबंधन सांप्रदायिक और जातिवादी है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जहां वे देश के गरीब दलित और पिछड़े लोगों के लिए समर्पित हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल अपने वोट बैंक के लिए समर्पित है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार माफियाओं को वोट बैंक के तौर पर देखती थी, लेकिन योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत देख रहे हैं। यह नया भारत वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के घोसी और बांसगांव में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सलेमपुर और बलिया में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने शिमला लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार किया। इस अवसर पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव इतिहास का पहला चुनाव है जहां कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में 22 लोगों के 16 लाख करोड़ रूपये के ऋण माफ किए हैं, लेकिन पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण हुई आपदा से निपटने के लिए 9,000 करोड़ रूपये नहीं दे सके। राहुल गांधी हमीरपुर लोकसभा सीट के लिए ऊना में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने एक स्थिर सरकार दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने काराकट लोकसभा क्षेत्र के औरंगाबाद के दाऊदनगर में जनसभा की। इसके बाद वे सासाराम संसदीय क्षेत्र के भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सासाराम विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कैमूर के मोहनिया में सभा करेंगे। महागठबंधन की ओर से सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने काराकट संसदीय सीट के दाऊदनगर में एक सार्वजनिक बैठक की। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राजद प्रत्याशी के समर्थन में बक्सर में जनसभा कर रहे हैं। राजद नेता मनोज झा ने भाजपा पर चुनाव के बाद राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को जेल भेजने की धमकी देकर प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए श्री झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताशा में ऐसे बयान देते रहे हैं क्योंकि एनडीए चुनाव हार रही है।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम बिहार और झारखंड की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं पटना साहिब सीट के बारे में।
भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। महागठबंधन से कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को टिकट दिया है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 1957 से 2004 तक कांग्रेस इस सीट पर 3 बार विजेता रही है, जबकि भाजपा और सीपीआई को 2-2 बार जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी नेतृत्व जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी पटना में पिछले दिनों अपना पहला रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के अंशुल अभिजीत इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के वोट बैंक के समर्थन से लोकसभा की चुनावी नैया पार करने का आसरा देख रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
और अब जानकारी लेते हैं झारखंड की गोड्डा सीट की।
गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें देवघर जिले का मधुपुर एवं देवघर शामिल है। दुमका जिले का जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र एवं गोड्डा जिले का पौर्याहाट, गोड्डा एवं महागमा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। आगामी 1 जून को होने वाले लोकसभा आम चुनाव में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से कुल 19 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन यहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के डॉ निशिकांत दुबे एवं कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच है। वर्ष 1962 से गोड्डा में गोड्डा संसदीय क्षेत्र में चुनाव होते आ रहे हैं, जिसमें 1962, 1980, 1984 एवं वर्ष 2004 में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूरज मंडल गोड्डा संसदीय क्षेत्र से वर्ष 1991 में सांसद बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां 4 बार जीत प्राप्त की है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, रांची।
लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल 61.76% मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7 सीट, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 तथा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। इस सीट पर 54% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे ज्यादा है। ये समाचार वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान रेमल पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ रेमल आधी रात तक बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल तटों को पार करेगा। इस बीच कोलकाता हवाई अड्डा प्राधिकरण ने तूफान को देखते हुए आज दोपहर से 21 घंटे तक के लिए हवाई सेवाओं का संचालन स्थगित रखने का निर्णय लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान कुल 394 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है।
सुंदरबन में तेज वर्षा हो रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। दक्षिण 24 परगना जिले के प्रशासन ने बखाली, गंगासागर और मौसुनी क्षेत्रों में होटलों की बुकिंग रद्द कर दी है। पर्यटकों को समुद्र तटों पर जाने से रोक दिया गया है। पूर्वी रेलवे ने एहतियाती कदम उठाते हुए सियालदह मंडल के सियालदह दक्षिण खंड और बारासत हसनाबाद खंड में रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रेल सेवाओं को स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
तूफान के असर से आज आधी रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच भूस्खलन होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। भारतीय नौसेना ने चक्रवात रेमल को देखते हुए तत्काल और प्रभावी सहायता के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना ने अपनी तैयारी में प्रभावित आबादी की सुरक्षा और बचाव के लिए आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सामग्री वाले 2 जहाज तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टर, डोनियर विमानों को भी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रखा गया। गया है। सहायता उपकरणों के साथ विशेष गोताखोर टीम कोलकाता और विशाखापत्तनम में तैनात की गई है। चिकित्सा आपूर्ति के साथ दो राहत टीमें कोलकाता में तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा विशाखापत्तनम और चिल्का से दो दो राहत दल तैयार हैं। गुजरात में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में कल शाम लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। राज्य के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निकांड की जांच के लिए एक विशेष टीम भी गठित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत तथा बचाव कार्यों की जानकारी हासिल की। घायलों के उपचार के लिए राजकोट के सिविल अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला एक बर्न वार्ड बनाया गया है। शवों की जान के लिए डीएनए के नमूने गांधीनगर की फॉरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे गए हैं। प्रथम दृष्टया से पता चला है कि आग लगने का कारण वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति की लापरवाही है। गुजरात उच्च न्यायालय ने टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। मामले पर सुनवाई कल होगी। वहीं दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के एक अस्पताल में कल भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे में 12 शिशुओं को बचा लिया गया है और अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एक अस्पताल में लगी आग में कई बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अस्पताल में हुए अग्निकांड में बच्चों की मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना थी। सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान शोक संतप्त माता पिता और रिश्तेदारों को यह सदमा सहने की शक्ति दें। उन्होंने घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि वे अस्पताल में नवजात बच्चों की मृत्यु पर बेहद व्यथित हैं। उन्होंने दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। श्री मोदी ने घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात और दिल्ली में दुखद आग की घटनाओं में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के लिए सहायता की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। घायलों को 50,000 रूपये भी दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लखीमपुर गोला मार्ग पर कल रात हुई एक बस दुर्घटना में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को उपचार के लिए शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मौत का गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। शाहजहांपुर जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवारों को सरकार और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव आर्थिक मदद दी जायेगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में रात 9:30 बजे से वर्षा जल संचयन विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना वर्मा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के निवेश सलाहकार सलमान फजलुर रहमान ने शनिवार को भारत की अग्रणी दवा कंपनी सनफार्मा के एक नए संयंत्र का ढाका के निकट संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये बांग्लादेश में कंपनी का दूसरा निवेश है और इसकी उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1 अरब से अधिक टैबलेट और कैप्सूल बनाने की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में फाइनल मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जायेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स 9 जीत 3 हार और 2 बिना नतीजों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। चक्रवाती तूफान रेमल भीषण तूफान में बदला। तूफान के असर से आज आधी रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच भूस्खलन होने की संभावना। विशेष जांच दल ने राजकोट अग्निकांड की जांच शुरू की। गुजरात उच्च न्यायालय ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत और कई घायल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज शाम फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।